તારીખ 12/7/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 320 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 50.
ભગવાન શ્રી જયસેનાચાર્ય મોક્ષ અધિકાર થી ભૂમિકા પહેલે પહેલે આચાર્ય મહારાજ ને મોક્ષ અધિકાર જો આગે પૂર્ણ હોવા 307 ગાથા તક મોક્ષ અધિકાર ચલા થા 294 લેકર કે 307 તક અબ ઉસ વિષય મેં જો ભી ગાથાએ ચલ ગઈ ઉસકા સંક્ષેપ વ્યાખ્યાન કરતે કુશલિકા કહેતે સંક્ષેપ વ્યાખ્યાન કરના ઉસી કા નામ કુશલિકા કહેતે સમાપ્ત હુઈ ઇસલિયે યહાં મોક્ષ અધિકાર સમાપ્ત હો ગયા અબ વિશેષ કહેને મેં આતા હૈ અબ ઇસ ગાથા કી ટીકા કરતે હુએ આચાર્ય ભગવાન કુછ વિશેષ બાત કરતે હૈ उसमें प्रथम ही औष्णिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है वही विचार में आता है। जीव में 5 प्रकार के भाव हैं, जो नीचे बताया है, औष्णिक, क्षायोष्णिक, क्षायिक, औदयिक। ये 4 भाव पर्याय रूप है, ये 4 भाव तो पर्याय रूप है और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, द्रव्य सामान्य द्रव्य रूप मैंने द्रव्य सामान्य रूप है। पांच भाव का नाम फिर से ले गए। जब ये विचार करते हैं आचार्य महाराज इस स्थान पर के परम पारिणामिक भाव है उदय भाव, उक्षम भाव, क्षयोक्षम भाव और क्षायिक भाव, ऐसे 5 भाव है, उसमें से उस 5 में से किस भाव से मोक्ष होता है, यानी मोक्ष का कारण रूप भाव कौन है, इसका विचार करना चाहते हैं आचार्य महाराज, वो बात बताना चाहते हैं। तो 4 भाव तो पर्याय रूप है, उदय भाव, उत्सम भाव, क्षोक्षम भाव और क्षायिक भाव, 4 प्रकार की तो पर्याय होती है। 5वां भाव है वो द्रव्य रूप है, शुद्ध पारिणामिक भाव है, वो द्रव्य रूप है, शक्ति रूप है, अनंत गुणों का एक रूप, अनंत शक्तियों का एक रूप द्रव्यत्व जो है उसको यहाँ शुद्ध पारिणामिक भाव कहने में आता है। यह परस्पर सापेक्ष ऐसा द्रव पर्याय द्वय वह आत्मा पदार्थ है। क्या कहते हैं कि 4 भावों पर्याय हैं, वो पर्याय और द्रव द्वय मैंने दोनों दोनों मिलकर के दोनों जोड़कर के जोड़ को बोला जुड़कर के एक सत्ताधारी एक अस्तित्व जिसमें है, अस्तित्व दो नहीं है उसमें, ऐसा एक आत्मा नामक पदार्थ है जिसको आत्मा कहते हैं, वो पदार्थ है। क्या कहेंगे कि जीव की पर्याय में उदय भाव है वो तो संसार रूप है, उपशम क्षयोपशमिक और क्षायिक ऐसे मोक्ष मार्ग की तीन प्रकार की पर्याय होती है। उपशम सम्यक दर्शन भी होता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी होता है और क्षायिक सम्यक दर्शन भी होता है। उपशम चारित्र भी होता है, क्षयोपशम चारित्र भी होता है और क्षायिक चारित्र भी होता है। ज्ञान में दो ही प्रकार होता है, क्षयोपशम भाव सूक्ष्म ज्ञान होता है और क्षायिक ज्ञान होता है, उपशम ज्ञान कभी होता नहीं है। ऐसा ही जीवन का परिणमन का प्रकार है। तो एक आत्मा पदार्थ में पर्याय के चार भेद और द्रव तो अभेद एक रूप है, उसका तो दो रूप होता ही नहीं। वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपणा वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। अब पहली बात बताई, शुद्ध पारिणामिक भाव किसको कहते हैं? पारिणामिक भाव का तीन भेद है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ऐसे तीन भेद है। पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? के तीन भेद है, जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक। अब थोड़ा पारिणामिक भाव के विषय में स्पष्ट कर दें कि जो पर्याय के चार भाव है वो कर्म सापेक्ष है। उदय भाव में कर्म का उदय का सद्भाव है, क्षायिक भाव में कर्म का उदय का क्षय की अपेक्षा लगती है उदय का अभाव होने पर भी, उपशम भाव में कर्म का उदय की उपशम की निमित्त रूप अवस्था है और क्षायोपशमिक भाव में कर्म का क्षयोपशम का रूप परिणाम होता है। कितने का क्षय, कितने का उपशम, ऐसा। लेकिन पारिणामिक भाव में कोई प्रतिपक्ष कर्म की अपेक्षा नहीं है, है? तो स्वभाव भाव है, कर्म की कोई अपेक्षा नहीं और वो अनादि अनंत होते हैं। क्या? जबकि ये चार भाव में कुछ भाव तो सादी शांत है, कोई सादी अनंत है, कोई सादी शांत है, कोई अनादि शांत भी है। जैसे उदय भाव है तो अनादि शांत है और क्षोभसम भाव है वो सादी शांत है, क्षायिक भाव है वो सादी अनंत है। और एक पर्याय के हिसाब से गिने तो सभी चारों भाव सादी शांत है, क्योंकि पर्याय की आदि होती है भी हो जाता है। लेकिन पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत होता है और उसमें कोई प्रतिपक्ष कर्म की उदय की भी अपेक्षा नहीं, उपशम की भी अपेक्षा नहीं, क्षयोपशम की भी अपेक्षा नहीं। पानी है वो एक द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य के स्थान में दृष्टांत रूप से ले सकते हैं लेकिन पानी कोई मूल द्रव्य नहीं है, है क्या? वो तो अनेक परमाणुओं का पिंड है, जिसको हम पानी कहते हैं वो एक मूल द्रव्य तो
नहीं है, लेकिन बहुत परमाणु की किसी एक पर्याय है, किसी एक प्रकार की पर्याय को हम पानी कहते हैं, है? और शुद्ध भी है, तो उसको स्वभाव कहां से लागू होगा? ऐसा कंध होता है वो तो अशुद्ध पर्याय हो गया, दो परमाणु हुआ तो भी अशुद्ध हो गया पर्याय में, एक परमाणु जो अलग रहता है वही शुद्ध अवस्था रूप है, बाकी स्कंद दो परमाणु का हुआ अवस्था में अशुद्धता हो गई, ऐसी बात। पारिणामिक भाव का दृष्टांत पुद्गल में तो एक परमाणु है जो अनादि अनंत मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता है, जिसमें उसका जड़त्व है वो पारिणामिक है, जैसे जीव में जीवत्व पारिणामिक है वैसे परमाणु में जड़त्व पारिणामिक है, क्षण द्रव्य में है पारिणामिक। पारिणामिक मैंने अनादि अनंत एक रूप रहना उसको पारिणामिक कहते हैं, अनादि अनंत बिना फेरफार ध्रुव रूप रहना वही पारिणामिक, जो ध्रुव स्वरूप है वो पारिणामिक है। ऐसे प्रकरणवश और भी इसका अर्थ शास्त्र में आता है, जैसे विश्व में निमित नैमितिक संबंध पारिणामिक भाव से है, क्या ये धवल में आता है? क्यों कि आकाश अनादि अनंत अन्य पदार्थ को अवगाहन में निमित पड़ता है, धर्मास्तिकाय जीव और परमाणु को गति होने में अनादि अनंत निमित्त पड़ता है, काणाणु बाकी के पांच पदार्थ को परिणमन में अनादि अनंत निमित्त पड़ता है, तो ऐसा निमित्त नैमितिक संबंध ज्ञान में अनादि अनंत निमित्त नैमितिक संबंध रूप है, ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञान में ये प्रतिभाषित होवे ही नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अनादि अनंत होने से वो पारिणामिक भाव रूप होता है, ऐसा कहने में आता है, तो प्रकरण बस उसका अर्थ है, यहां ऐसी बात नहीं है, वो पर्याय आश्रित है। यहां तो प्रथम जीवत्व पारिणामिक की बात करते हैं कि जीव में जो अनंत शक्ति है, तीन प्रकार के पारिणामिक में पहले की बात चलती है, इस तीन प्रकार में के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व, क्या शुद्ध जीवत्व कैसा होता है, इसका लक्षण क्या, स्वरूप क्या, लक्षण मैंने स्वरूप क्या कि शक्ति लक्षण है, शुद्ध जीवत्व का लक्षण क्या है, सामर्थ्य इसका स्वरूप है, लक्षण मैंने स्वरूप, सामर्थ्य इसका स्वरूप है, अनंत गुणों का अनंत सामर्थ्य, तो सामर्थ्य इसका स्वरूप है, उसको यहां शुद्ध जीव द्रव्य पारिणामिक भाव रूप कहने में आता है, वो कभी घटता भी नहीं, कभी बढ़ता भी नहीं, कमी वैसे नहीं होती उसमें, वैसा का वैसा रहता है, वो शुद्ध जीवत्व उसका शक्ति मैंने सामर्थ्य स्वरूप है, ऐसा पारिणामिक पड़ा है, और वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित है, शुद्ध द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से वो जाना जाता है, किस प्रकार से ज्ञान में वो जाना जाता है, ये कहने का अभिप्राय जो है उसमें बहुत अच्छा है आचार्य महाराज का, कि जिसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नए ज्ञान में प्रकट होता है उस ज्ञान का विषयभूत ये शुद्ध जीवत्व पारिणामिक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परिभाषा पढ़ने वाला विद्वान के विकल्प रूप ज्ञान का वो विषय नहीं है, दूसरे नहीं का तो विषय नहीं, दूसरे ज्ञान का तो विषय नहीं, मैंने अवधि ज्ञान का विषय नहीं, जाति स्मरण ज्ञान का विषय नहीं, मन प्रयोग ज्ञान का विषय नहीं, क्या छद्मस्थों को केवल ज्ञान की तो कोई चर्चा करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई जानने का बाकी नहीं रहता। लेकिन छद्मस्थों का जो ज्ञान है उसमें भी जो श्रुत ज्ञान है, उसमें भी जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नई रूप है, सिर्फ उसी के आश्रित, मैंने उसी नए का विषय ये होता है, इसलिए कोई उसका अर्थघटन समझे कि शुद्ध पारिणामिक ऐसा है ऐसा है वैसा है, इसलिए उसको शुद्ध पारिणामिक का ज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं है। देखो क्या बात निकलती है उसमें से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित का मतलब क्या, कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय नहीं हो जिसको, उसको शुद्ध पारिणामिक भाव जानने में आता नहीं। चाहे शास्त्र से इस बात को समझे तो भी उसका ये विषय नहीं हुआ। क्या समझ में और नए ज्ञान में क्या अंतर है? सम्यक ज्ञान में भी नए है, बहुत है, अनंत नहीं है, उसमें जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है उसका ही विषय शुद्ध पारिणामिक होता है, पर्यायार्थिक का नहीं, व्यवहार नहीं का नहीं, किसी भी नहीं का नहीं, एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का जो विषय है वो शुद्ध पारिणामिक भाव है। ऐसा नहीं प्रकट होने से शुद्ध पारिणामिक भाव है वो अनुभव गोचर होता है, इसके सिवा उसका ज्ञान होता नहीं है, ऐसा कहते हैं। नहीं है, भाव वासन में नहीं प्रकट नहीं हुआ क्या? भाव वासन में नए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, मिथ्या ज्ञान है। अब क्या ज्ञान है? भाव वासन तक ज्ञान मिथ्या है, श्रद्धा मिथ्या है, आचरण मिथ्या है, बहुत अंतर है। समझण रूप ज्ञान विकल्प के साथ अभेद है। क्या समझण वाला ज्ञान विकल्प के साथ अभेद है, और ये शुद्ध जीवत्व वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित ज्ञान शुद्ध पारिणामिक भाव के साथ अभेद है, उतना बड़ा अंतर है। हाँ, अनुभूति रूप है, अनुभव रूप है, हाँ आश्रित, मैंने उसी ज्ञान सिवाय नहीं हो गए, उसके आश्रय से ही हो गए। गंभीर बात क्या है? क्यों? इतनी तो बात जरूर है भगवान पे कि जितना दूर गया से एटलू तो पाछो वळवू पड़े। आपने जितना दूर गया से अपना स्वरूप थी एटलू तो पाछो वळवू पड़े, એમાં તો બીજો કોઈ ઉપાય નથી। इसलिए ज्ञानियों ने ये शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि मुमुक्षु की भूमिका में भी जो भी उदय है, हमारे जो उदय के प्रसंग है जितने भी हैं, वो सभी उदय के प्रसंग में मंद रस से प्रवृत्ति करना, तीव्र रस से कभी प्रवृत्ति। क्यों? कि समय थोड़ा होने के बावजूद भी रस तीव्र हो जाता है तो बहुत अंतर पड़ जाता है, दूर हो जाते हैं आत्मा से, स्वरूप से दूर हो जाते हैं। और रस तीव्र होने में समय का कोई लंबा समय की जरूरत नहीं पड़ती। एक सेकंड में जानते ही मूर्छा आती है कि नहीं आती है, कोई ऐसा प्रसंग बनता है, ऑपरेशन देखने का हो या कोई ऐसा अघटित जो नुकसान का बड़ा प्रसंग हो, तो जानते ही मूर्छा आती कि नहीं आती। मूर्छा कब आती है? तीव्र रस वाला परिणाम होता है, सेकंडों में बहुत तीव्र रस हो जाता है, इसलिए उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। रस को तीव्र होने में ज्यादा समय नहीं लगता। देखिए ना, ये शुद्धात्मा अनुभव पाव सेकंड किसे भी कम काल है। चतुर्थ गुण स्थान वाला उत्सम सम्यक दर्शन में जो स्वानुभव होता है वो एक सेकंड नहीं, आधा सेकंड भी नहीं, पाव सेकंड से भी कम काल है उसमें। रस कितना, आत्मरस कितना, कि उतना आत्मरस से वो अनुभव होता है कि भव की अनंतता को खत्म कर देता है, अनंत भव उसको नहीं रह सकता। ज्ञान मुंडाई जाए छे, ज्ञान जागृति आत्म जागृति मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जो भी प्रसंग बना है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिना प्रयोग ये काम होने वाला नहीं है। क्यों? कि उल्टा प्रयोग हमारा चल ही रहा है, तो उल्टा प्रयोग के सामने सुल्टा प्रयोग ही कामयाब होगा। हमारा उल्टा प्रयोग तो हो ही रहा है, तो उल्टा प्रयोग के सामने तो सुल्टा प्रयोग चाहिए, सीधी साधी बात है। कोई हमारे सामने तलवार चलाता है तो हमारी लाठी क्या काम करेगी? हाँ, तो तलवार ही चाहिए। और पिस्तौल से काम करता है तो तलवार क्या करेगी? पिस्तौल चाहिए उसके सामने। लड़ाई में तो वही बात होती है कि जो साधन अगला के पास है वो साधन हमारे पास हो तो हम हारेंगे नहीं, वरना हार जाएंगे। तो ये भी संसार और मोक्ष प्रतिपक्ष में है, और आपस में लड़ाई भी होती है। क्या ये रण मैदान है? क्या तो रण मैदान में क्या होता है कि जीतना होता है, इसलिए तो हमारे जीतने वाले को तो हम जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों जिन कहा, नाम क्यों जिन रखा? तो उन्होंने मैदान जीत लिया इसलिए उनको हम जिन कहते हैं। जीतना इसका नाम जीन है, जिनत्व उसी को ही कहते हैं। इसलिए हमारे पास हमारा जो नुकसान है वो उल्टा प्रयोग से हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हमें दुख लगा, तो ये आपने दुख का विचार किया या लगना हुआ? हमको दुख का विचार है ऐसा बोलते हैं आप? दुख का हमको अनुभव हो गया, दुख का विचार नहीं आया। तो जो अनुभव की चीज है उसके सामने अनुभव चाहिए, ये मिथ्या अनुभव है। जहां दुख लगता है वहां मिथ्या अनुभव है, तो मिथ्या अनुभव के सामने सम्यक अनुभव चाहिए, उसमें विचार क्या काम करेगा? विचार का कोई काम नहीं चलेगा। उल्टा विचार के सामने सुल्टा विचार रखो, लेकिन उल्टा अनुभव के सामने तो सुलटा अनुभव चाहिए। जो भी हथियार है वो तो समकक्षा का होना चाहिए ना, जब तो जीतेंगे, वरना तो जीतेंगे कैसे? सीधी सादी बात है। तो सत्संग दरअसल मैं किया ही नहीं क्या? सत्संग का राग हुआ अवश्य, लेकिन रुचि नहीं थी। राग होना और रुचि होना अलग अलग बात है। रुचि ज्ञान पूर्वक होती है, राग तो अंधा है। बिना ज्ञान भी राग तो हो सकता है, लेकिन रुचि तो ज्ञान पूर्वक होती है। इसलिए सत्संग तो करने में, सत्संग करने में कुछ पूर्व शर्त है। क्या? सत्संग करने में कुछ पूर्व शर्त है कि आत्मरुचि से सत्संग करना। क्या? वैराग्य समेत सत्संग करना। क्या? इंद्रिय निरोध पूर्वक सत्संग करना और सरलता समेत सत्संग करना है। ऐसा है, आपको माल लेना है और पैसा नहीं देना है, कोई प्रमाणिक बात है क्या? सोना लेना है तो 5,000-4,000 रुपया जो भी तोले का है वो देना पड़ेगा, और हीरा लेना है तो जो भाव है वो देना पड़ेगा, उसमें सोने का भाव नहीं चलेगा, वो तो ग्राम का भी भाव नहीं चलेगा, कैरेट का भाव देना पड़ेगा। और लोहा लेना है तो टन का भाव देना पड़ेगा, उसमें तो टन का भाव होता है कि 5,000 रुपया टन, लेकिन हीरा तो 5,000 रुपये में आधा कैरेट भी नहीं आवे, ऐसे भी हीरा होता है। तो जैसा माल लेना है उतना पैसा देना पड़ेगा। आपको माल तो चाहिए उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, बढ़िया से बढ़िया, और कहेंगे कि कोई शर्त नहीं जी। प्रामाणिकता से तो माल लेने को जाएंगे, माल लेने को जाएंगे तो प्रामाणिकता से लेने को जाएंगे कि नहीं? ठगना हो तो दूसरी बात है, झूठी जाली नोट भी दे देंगे, लेकिन प्रामाणिक आदमी तो ऐसा काम करेगा। विकल्प में प्रश्न असल में क्या है? कोई कुछ मिलने वाला नहीं, खाली जगह रखकर, अवकाश रखकर आना चाहिए। अगर कोई बात हमें चाहिए तो उस बात के लिए जगह तो खाली होनी चाहिए ना। इसलिए शास्त्र में ऐसी पद्धति भी आई है, प्रश्नोत्तर। क्या? हम चर्चा क्यों रखते हैं? हम क्यों पूछते हैं कि प्रश्न है क्या? चर्चा के समय हम क्या पूछते हैं? सीधा भाषण नहीं करते, प्रवचन नहीं देते। प्रश्न है क्या, इसका मतलब क्या कि आपको कुछ समझने की जिज्ञासा है तो समझने की खाली जगह है, अगर जिज्ञासा नहीं है तो कोई खाली जगह नहीं है। एक मक्खी थी, मक्खी तो विष्ठा पर बैठी, विष्ठा वो लगा लेती है वहां, उसको अच्छी लगती है, सब अत्तर लगा लेते हैं वैसा। फिर वो मक्खी वहां से उड़ी और कोई सुगंधित फूल पर बैठी, दूसरी मक्खी भी वहां बैठी थी, उसने बोला कितनी अच्छी सुगंध आती है, तुम कहां जाती हो देखिए इधर कितनी अच्छी सुगंध है, तो मुझे तो वही को आती है। क्या बोलेंगे वो, मुझे तो वही वही बो आती है। क्यों? कि उसने खाली जगह नहीं रखी। तो सत्य के लिए श्री गुरु ऐसा फरमाते हैं कि सत्य के लिए विचार की भूमिका में अवकाश रखना, सत्य का स्थान, सत्य स्थान पावे ऐसी कोई खाली जगह रख करके बैठ, जब ही सत्य का सत्य स्थान पाएगा। ठीक है, उसका उसका बहुमान नहीं करें। मतलब बातों से तो पेट नहीं भरता, तो वे बात चली थी कि बातों से तो पेट नहीं भरता, भूख लगी है तो खाना पड़ेगा, मिठाई का कितनी भी प्रशंसा करेगा कि ये 200 रुपये किलो वाली है, ये 400 रुपये किलो वाली है, इससे कोई पेट नहीं भरेगा। तो प्रयोग का जो विशेष रूप चलता था ना, ये बातों की बात नहीं है, ये बातों की तो बात नहीं है, विचार की भी बात नहीं है, समझ से आगे हो करके जो उपदेश हमारी समझ में आता है उस उपदेश को हम अंतर परिणमन में परिणमावें, जिस कार्य पद्धति से परिणमावें उसको हम प्रयोग कहते हैं। प्रयोग है उपदेश को परिणमाने का एक प्रोसेस है, सादी भाषा में, प्रोडक्शन की भाषा में उसको प्रोसेस कहता है, और साइंस की भाषा में इसको फिनोमेन कहते हैं। तो ये ऐसा कोई काम होता है तो बहुत पद्धति से होता है, ऐसे बातों से काम नहीं चलता, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। एक प्रयोग है, वो परिणमन है, वही समझी हुई बात का अमलीकरण है। हमारे दीपचंद जी साहब ने अनुभव प्रकाश नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, बहुत छोटा ग्रंथ है, सानुभव का, आत्मानुभव का। तो उसमें भाव श्रुत की परिभाषा लिखी है, भाव श्रुत, भाव से श्रुत किया, भावना पूर्वक जो श्रवण किया उसका अमलीकरण हुए उसको हम भाव श्रुत कहेंगे। क्या? सुनी हुई बात का अमलीकरण होवे, अमल होवे, उसी को ही हम भावश्रुत कहते हैं। सिर्फ बात सुन करके, ये बात यहाँ की यहाँ छोड़ करके हम खड़े हो जाते हैं, तो इससे कोई काम होने वाला नहीं, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। तो ये सब बातें आती हैं शास्त्र में, ये भी बात आती है।
सिर्फ वो कहने की बात नहीं रहती, कुछ करने की भी बात है उसमें, वो नहीं करते हैं और बात की बात रह जाती है। उतने हमें भूख लगी हो और देर हम लगाएं ऐसा तो बनता नहीं, प्यास लगी हो और पानी मिले हम देर लगाते नहीं, प्यास लगी हो और पानी मिले हम देर लगाएंगे क्या, विचार करेंगे क्या अभी पिए या नहीं पिए, किसी को पूछ करके पिए या बिना पूछे पिए, कोई ऐसा विचार करते हैं, सीधे पीने लग जाते हैं। ऐसे हमें इस उपदेश ग्रहण करने की प्यास कितनी लगी है उस पर ये आधारित होगा। अगर हमें प्यास नहीं लगी तो कितना भी पानी मिले हम उसको ढोलते रहेंगे क्या, बिगाड़ते रहेंगे, बहते रहेंगे वो पानी, उसको तो पानी ही पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिले तो उसका प्राण चला जाएगा, उसी का नाम प्यास है। उसको पानी की जगह न मिठाई चलेगी न नमकीन भी चल सकता है क्या, हाँ कोई तो भुजिया दे देवे, प्यास लगी है ना खाओ भुजिया, मर जाएगा। प्यास लगी हो पानी के जगह भुजिया खा जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाते खाते मर जाएगा, क्योंकि प्यास और बढ़ जाएगी। पानी के जगह न मिठाई चलती है न नमकीन भी चलता है, और भी प्यास ऐसी चीज है कि पानी नहीं मिले तो मर जाए, ये हालत होनी चाहिए। कल हमारे पूज्य सुगानी जी का दृष्टांत दिया था, एक दिन में उसने उतना काम किया, तो एक दिन में जब उसने इतना काम किया तो हमने पूछा, शाम को घूमने को गए थे सोनगढ़ में, एक दो मील पर एक तालाब है छोटा सा, वहां घूमने को गए थे, तो वहां तालाब तो पाली पर बैठकर कुछ चर्चाएं करने लगे। फिर हमने एक प्रश्न निकाला कि भाई जी आप इधर आए इसके पहले आपकी अवस्था कैसी थी, जो इतना माल ले लिया क्या, तो ऐसा बोले कि हमको ऐसी प्यास लगी थी कि या तो हमें ये चीज मिले तो हम जिंदा रहें वरना हमारा प्राण छूट जाए। क्या बोले, या तो देह छूटने वाला था, क्या बोले, या तो विकल्प फटने वाला था, विकल्प फटकर निर्विकल्प स्वानुभव की दशा हुई, तो बोले ऐसे कि या तो विकल्प फट जाएगा या तो हमारा देह छूट जाएगा। ऐसी हालत हमारी हो गई थी, किसी हालात में हम इधर आए तो विषय परिणमन हो गया, सुनते ही परिणमन हो गया, ऐसे हालत में नहीं आते तो वहां भी 50-50 साल से बैठे हैं लोग, आज जो बैठे हैं वो 50 साल से भी बैठे हैं, उससे कोई समय का तो कोई उसमें कोई काम नहीं है, कोई टाइम फैक्टर लागू नहीं होता इसमें। कहते हैं रस में तो एक सेकंड में मूर्छा आती कि नहीं आती, सुनते हैं कि ऐसा हो गया तो जीव सुनते ही मूर्छा क्यों खाता है, इतना दुख हो जाता है एक सेकंड में सुनते ही तो मूर्छित हो जाता है, तो रस तो बढ़ सकता है, उसमें टाइम लगने की कोई जरूरत पड़ती है क्या, कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी शक्ति है जीव में, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर सके, ऐसी जीव में अनंत शक्ति भरी है। देखिए चतुर्थ गुण स्थान में सागरोपम का आयुष्य व्यतीत हो सकता है, सरवार सिद्धि का विमान है सबसे ऊपर सिद्धशिला के बगल में पड़ोस में, सम्यक दृष्टि जीवी वहां जाते हैं, वहां कोई मिथ्या दृष्टि जा ही नहीं सकता, वो भी मुनि दशा से केवल ज्ञान नहीं लिया तो हो जाता है, सामान्य सम्यक दृष्टि भी नहीं जाता, लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में भावलिंगी मुनि दशा में जुड़ने वाले केवल ज्ञान के पुरुषार्थ में लगे हैं लेकिन आयुष्य तक केवल ज्ञान नहीं लिया, सर्वार्थ सिद्धि में कोई जाते हैं, सब नहीं जाते कोई जाते हैं, ऐसे महामुनि के जीव होते हैं वहां जाने वाले। वहां तो चतुर्थ गुण स्थान है, इसके आगे की कोई परिस्थिति नहीं है, तैतीस सागर की स्थिति है, लेकिन केवल ज्ञान लेने में कितना समय चाहिए, अंतर्मूर्त उसमें सागरोपम का काल कभी लगता नहीं है। आप देखिए कि 24 तीर्थंकर हमारे हैं, इनके चार्ट बनाए हुए हैं शास्त्र में, क्या चार्ट बनाए हुए हैं कि वो कहां से आए, किस जगह से वो इधर मनुष्य हुए, कोई देवलोक में से आए, कोई कहां से आए, कोई कहां से आए, नारकी में से भी आते हैं, उसका गृहस्थी का काल कितना। तो जैसे ऋषभदेव भगवान 83 लाख पूर्व गृहस्थी में रहे, आए थे सर्वार्थ सिद्धि में से, 84 लाख पूर्व का मनुष्य आयु लेकर के आए चतुर्थ काल के प्रारंभ में, 83 लाख पूर्व गृहस्थी में रहे, बड़े राजा थे, और 1 लाख पूर्व जो है उसमें 1000 वर्ष सिर्फ छद्मस्थ मुनि अवस्था में रहे हैं, 1000 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, और 19 में जो मल्लीनाथ भगवान थे वो तो कुछ 3 दिन ही रहे हैं मुनि अवस्था में और केवल ज्ञान में आ गए, और भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर है वो 12.5 वर्ष तक रहे, सिर्फ 30 साल के आयु में दीक्षा लिया, 42 साल 6 महीना मुनि दशा में रहे और फिर 30 साल जो है वो केवल ज्ञान में रहे, सर्वज्ञ दशा में रहे, 72 साल की आयु थी वो भी, क्या अभी के 2500 साल पहले इतनी लंबी आयु नहीं थी, 72 साल की आयु थी, तो 30 साल वो सर्वज्ञ दशा में रहे हैं, मुनि दशा में 12.5 साल आ रही है, उससे ज्यादा नहीं रहा। तो मतलब क्या है कि मुनि दशा में जो केवल ज्ञान होता है उसका काल सारे आयुष के प्रमाण में अनुपात में बहुत कम होता है, और उसमें भी जो केवल ज्ञान का पुरुषार्थ की श्रेणी है जिसको हम शुक्ल ध्यान की श्रेणी कहते हैं वो अंतर्मूर्त की होती है, कितनी, 1 घंटा से ज्यादा नहीं, काम कितना हुआ, सर्वज्ञ पद को परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते, इसलिए टाइम की कोई ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, इसमें शक्ति बहुत है आत्मा में, काम करने की शक्ति बहुत 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 है, ऐसी बात है। हाँ अवकाश लेकर के नहीं आया है, उतना ही नहीं, कुछ बात ऐसी भी है कि अभी तक उसने जो कुछ समझा है उसमें वो संतुष्ट है, आगे समझने की रुचि उनकी नहीं रही, जाएगा अवश्य जाएगा, या तो आगे जाएगा तो पीछे जाएगा, परिणाम तो एक चाल है, चले बिना तो रहता नहीं जी,
या तो आगे जाए या तो पीछे जाए, तीसरे तो कोई जगह ही नहीं है चलने की, विचार कर लेना कि कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। बात ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए अब क्या करें इसकी तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न करता है वो तो अपनी जिज्ञासा के कारण करता है। देखिए, नौकर का खाने से, चाकर का खाने से राजा का, धनी का कोई पेट भरता है क्या है? दूसरा खा लेवे और दूसरा का पेट भर जावे, ऐसा बनता है क्या? अपनी जिज्ञासा नहीं होगा होगी तो वो बात स्थान अपने में कैसे स्थान पाएगी, ये बात है। अवश्य होनी ही चाहिए। इसलिए अब देखिए, समय सार के छठी गाथा आचार्य महाराज ने क्या लिखा, ये आत्मा कौन सा है, कैसा है कि जिसको जानने की जरूरत है, ऐसा प्रश्न उठाया है। कथम इति चेत, आत्मा आत्मा कैसा है, अगर ऐसी जिज्ञासा नहीं है तो हमें उत्तर भी देना नहीं है। फालतू की बात नहीं कर रहे, ऐसी वहां से ये बात निकलती है। उपदेश ग्रहण करने का सबसे अच्छा अवसर कौन सा, एक प्रश्न मैं उठाता हूं कि उपदेश को पाने का और ग्रहण करने का सबसे अच्छा अवसर मैंने काल कौन सा, कि एक जिज्ञासा काल ही सबसे अच्छा काल है क्या? उपदेश को ग्रहण करने का काल जिज्ञासा काल ही सबसे अच्छे का काल है। इसलिए हम कहते हैं कि रात को 12 बजे अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो गए तो उसी वक्त सत्समागम होवे, ऐसी व्यवस्था बिठाना चाहिए क्या? हम देहार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। 12 बजे हार्ट अटैक रात को आवे ने तो डॉक्टर का नंबर हमारी डायरेक्टरी में आगे से लिखा हुआ रहता है, फैमिली डॉक्टर का, कि भाई साहब अभी अटैक आ गया है, बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर के फौरन पहुंच जाओ हमारे यहाँ। व्यवस्था रखते के नहीं, किसके लिए? देह के लिए। आत्मा के लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? कहाँ जाना है? लेकिन दुख किसी को चाहिए, चला जाएगा अधोगति में, मंजूर है क्या? है? आपको दिखा दे कि एक घोड़े को गाड़ी खींचना है, पूरा खाना भी नहीं मिला है, फिर भी उसको बाहर ढोना है, चाबुक लगा लगा करके उसको हिलाता है, खिंचाता है गाड़ी, क्या अपनी ये अवस्था मंजूर है क्या? है? ये कीड़ा है, चलता है, मोटर चल जाती है, इस पर मर जाता है, क्या ये अवस्था हमें मंजूर है क्या? तो हमें दुख तो नहीं चाहिए, अगर हम इसका आगे से विचार नहीं करेंगे तो अधोगति तो तैयार ही है। हमारा परिणाम देखते हुए बनिए लोगों का, क्या दूसरे की बात नहीं करते, बनिए लोगों का परिणाम देखते हुए अधोगति तैयार ही है, निश्चित ही है, दूसरी गति मिलने वाली नहीं है। ये बात है, कितने पाप के परिणाम होते हैं, सारे दिन यही चक्कर चलता है, सोते वक्त भी वही चलता है, खाते वक्त भी वही चलता है, दुकान पे जाते हैं तो वही चलता है। ये बात है कि हमें आत्मार्थ के लिए अच्छी से अच्छी किसी भी कीमत पे व्यवस्था बिठानी चाहिए, चाहिए क्यों नहीं, निरंतर सत्समागम नहीं चाहिए तो लक्ष्य तो निरंतर रहना चाहिए कि हमें सत्समागम कैसे मिले। हाँ, अंतर का सबका समागम करो, बाहर का नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो वहां ही होना चाहिए, तो ही आत्म कल्याण हो सकता है, वरना आत्म कल्याण कुछ भी कर ले होने वाला नहीं है। चाहे पूजा करे, भक्ति करे, दया दान करे, यात्रा करे, शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, व्रत करे, तपस्कान करे, तपश्चर्या मानी हुई है तो नहीं, कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी बात है। आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए पूर्व तैयारी पूरे अंतर की लगन से अगर नहीं होती है तो ऊपर ऊपर से काल गवाने के सिवाय, मनुष्य आयु खोने के सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। यही परिस्थिति है, किसमें मंदरस से सत्समागम में क्यों, नहीं मंदरस में नहीं, उदय का रस छोड़ करके, हाँ उदय काल में सत्समागम में क्यों बोले आप, हाँ हाँ ठीक है, नुकसान तीव्र रस से नुकसान होता है, जहां भी नुकसान का अपनों को ज्ञान होता है तो हम सावधान हो जाते हैं, तीव्र रस में नुकसान बहुत होता है आत्मा, ये परिणाम बहुत फिर चालू रह जाता है, उसकी परिणति बन जाती है, तीव्र रस से क्या होता है कि परिणति बन जाती है, वो चालू रह जाती है, तो तीव्र रस से तो बहुत नुकसान होता है, इसलिए नुकसान एक ऐसी चीज है कि जीव को हटाती है वहां से, लाभ एक ऐसी चीज है कि जीव को तीव्र रस से वहां आकर्षित करती है, लाभ नुकसान चीज है, और इसके लिए तो स्वाध्याय है कि हम लाभ अपना लाभ नुकसान को तो कम से कम समझे, अगर हमारा लाभ नुकसान कहाँ होता है उसी कोई नहीं समझे तो हम कहां से हटेंगे और कहां जाएंगे, यही कारण है। तो ये अभी प्रकरण चलेगा परम परिणामी भाव का, वो तो कैसा है, किस स्वरूप से निरावरण होता है, और उसका नाम शास्त्र में दिया है शुद्ध परिणामी भाव, ये जीव का मूल स्वरूप है, ये आत्मा का असली स्वरूप है, असली स्वरूप से अनजान होने से जीव अपने को नकली स्वरूप जो है उसको मान बैठता है, और यही मिथ्या मान्यता उनको संसार परिभ्रमण का 84 लाख योनि में जन्म मरण का कारण, इसलिए यही प्रकरण पहले आचार्य महाराज यहाँ इसी गाथा में शुरू करेंगे, बाद में इसकी महत्वता कितनी है, इसकी महत्ता कितनी है,
उसको दिखाने के लिए और भी व्याख्यान करेंगे उस व्याख्या का समय।